एकत्रा फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथ सार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार, अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ग्रंथ सार के आज के संवाद में आप सबका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक बेहद प्रभावशाली उपन्यास की, इयन मैकाइवन का अटोनमेंट। समकालीन ब्रिटिश साहित्य में इसका एक अहम मुकाम है।
हाँ बिल्कुल, और मैकाइवन की खासियत ही यही है, वो इंसानी रिश्तों की बारीकियों और मतलब नैतिक उलझनों को जिस तरह आप पकड़ते हैं, कमाल है।
सही कहा, इसीलिए शायद उनके शुरुआती दौर में उन्हें इयन मैकाबरे भी कहा गया है ना, थोड़ा डार्क ह्यूमर, मनोवैज्ञानिक गहराई।
हाँ कुछ वैसा ही। अटोनमेंट जो 2001 में आया वो तो बुकों के लिए नॉमिनेट भी हुआ था, और इसे अक्सर उनकी सबसे बेहतरीन रचना माना जाता है।
और है भी, ये कहानी है कल्पना की ताकत की, उसके खतरों की, अपराध बोध के बोझ की, और शायद प्रायश्चित की जो कोशिश होती है उसकी।
बिल्कुल, कहानी का फैलाव भी देखिए, 1930 के दशक से शुरू होकर दूसरा विश्व युद्ध देखती हुई 21वीं सदी की शुरुआत तक पहुंचती है।
तो आज हम इसी कहानी की तहों में उतरेंगे, किरदारों के उतार चढ़ाव, उनके एहसासों को समझने की कोशिश करेंगे, और उन मुख्य विषयों पर बात करेंगे जो उसे आज भी इतना प्रासंगिक बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं।
कहानी शुरू होती है 1935 की एक बहुत ही गर्म दोपहर में टेलिस परिवार की जागीर पर। माहौल में एक अजीब सा तनाव है, कुछ है जो कहा नहीं जा रहा।
हाँ, वो गर्मी का जिक्र बार बार आता है, जैसे कुछ उबल रहा हो अंदर ही अंदर।
बिल्कुल, और यही मिलती है हमें 13 साल की ब्रायनी टेलिस, एक होनहार बच्ची जिसे लिखने का शौक है पर दुनिया को अपनी कल्पना के हिसाब से चलाना चाहती है, हर चीज तरतीब में हो, साफ सुथरी।
कंट्रोल की चाहत शायद।
हाँ, फिर है उसकी बड़ी बहन सिसिलिया जो कैम्ब्रिज से लौटी है, थोड़ी खोई खोई सी, और रॉबी टर्नर घर की नौकरानी का बेटा जिसे टेलिस परिवार ने ही पढ़ाया है, वो भी कैम्ब्रिज ग्रेजुएट है, होनहार है।
और सिसिलिया और रॉबी के बीच कुछ है,
एक खामोश सा रिश्ता, गहरा पर समाज की दीवारें हैं बीच में, ऊंच नीच का फर्क।
और यहीं से मुझे लगता है कहानी की वो उलझन शुरू होती है जिसका अंजाम भयानक होता है, ब्रायनी की कल्पना।
हाँ उसकी कल्पना, वो देखती है फव्वारे के पास सेसिलिया और रॉबी को कुछ बहस होती है, सेसिलिया एक कीमती गुलदस्ता तोड़ देती है, फिर गुस्से में कपड़े उतारकर उसके टुकड़े निकालने फव्वारे में उतर जाती है।
और ब्रायनी इसे कैसे समझती है?
वो अपनी 13 साल की समझ से इसे देखती है, उसे लगता है रॉबी जबरदस्ती कर रहा है या सेसिलिया का अपमान कर रहा है, मतलब वो वयस्कों के बीच की जटिलता को समझ नहीं पाती।
अच्छा,
फिर एक और गड़बड़, रॉबी एक खत लिखता है सेसिलिया के लिए, थोड़ा निजी किस्म का, वो गलती से ब्रायनी के हाथ लग जाता है।
ओहो,
उसे पढ़कर ब्रायनी के मन में रॉबी की छवि एक विकृत इंसान की बन जाती है। और फिर तीसरी घटना, जब वो लाइब्रेरी में उन्हें बेहद करीबी हालत में देख लेती है,
जिसे वो शायद हमला समझ लेती है।
बिल्कुल, अपनी अनुभवहीनता में वो उसे जुनून या प्यार नहीं बल्कि एक तरह का हमला समझती है, उसके मन में रॉबी खलनायक बन चुका है।
तो ये तीन गलतफहमियां, ये एक तरह से बारूद इकट्ठा कर रही थी।
हाँ, और फिर चिंगारी लगती है जब उसी शाम चचेरी बहन लोला क्विंसी पर अंधेरे में हमला होता है। ब्रायनी का दिमाग, जो पहले से रॉबी को मुजरिम मान चुका है,
वो फौरन उंगली उठा देता है
बिना सोचे समझे। वो पूरे आत्मविश्वास से कहती है, मैंने उसे देखा, अपनी आंखों से देखा, एक बच्ची की गवाही जो सच नहीं है।
और नतीजा?
नतीजा भयानक, उस झूठी गवाही और उस खत के आधार पर रॉबी गिरफ्तार हो जाता है। सिसिलिया चीखती रह जाती है पर उसकी कोई नहीं सुनता। रॉबी की जिंदगी, उसका भविष्य, सेसिलिया से उसका रिश्ता, सब तबाह।
उफ, और यहीं पहला हिस्सा खत्म होता है।
जी हाँ,
एक भारी मन के साथ।
जी हाँ बिल्कुल। फिर कहानी 5 साल आगे बढ़ती है, 1940 का वक्त, रॉबी जेल से निकलकर फौज में है।
हाँ, ये शर्त थी शायद उसकी रिहाई की।
जी, और वो ब्रिटिश सेना के साथ फ्रांस से डनकर्क की तरफ पीछे हट रहा है। ये हिस्सा, ये युद्ध की भयावहता का आईना है।
मैकाइवन का वर्णन बहुत शक्तिशाली है। हाँ,
बेहद तबाही, मौत, लाशें, भागदौड़। वो रॉबी जो कैम्ब्रिज में कविताएं पढ़ता था, अब दो और सिपाहियों के साथ बस जिंदा रहने की जद्दोजहद कर रहा है, युद्ध का असली चेहरा।
यहाँ मैकाइवन ने कैसे व्यक्तिगत त्रासदी को इतिहास के बड़े फलक से जोड़ा है, वो देखने लायक है। रॉबी का बदलना?
हाँ, वो बदल गया है, कठोर हो गया है, लेकिन एक चीज है जो उसे थामे हुए है।
सिसिलिया।
सिसिलिया की यादें, उसके खत। रॉबी जिस्मानी तौर पर घायल है, उसे सेप्टिसीमिया हो रहा है, खून में इन्फेक्शन,
हालत बिगड़ रही है।
हाँ, पर दिमागी तौर पर उसे सिसिलिया का प्यार जिंदा रखे हुए है। उसका एक ही मकसद है, किसी तरह चैनल पार करके सिसिलिया तक पहुंचना।
ये उम्मीद ही उसे चला रही है।
पर इसमें भी एक अजीब सी उदासी है, एक अनहोनी का एहसास। कहानी उसे डनक के बीच पर छोड़ देती है, थकावा, बुखार से तपता। नाव का इंतजार करते हुए वो सिसिलिया के सपने देखता है,
और वहीं
वहीं उसका सफर शायद रुक जाता है।
अब कहानी का फोकस फिर बदलता है, ब्राइनी पर आता है। वो 18 की हो गई है।
और वो क्या कर रही है?
उसने कैम्ब्रिज जाने का अपना सपना छोड़ दिया है।
प्रायश्चित के तौर पर वो लंदन के एक अस्पताल में नर्स की ट्रेनिंग ले रही है।
अच्छा, तो ये उसका तरीका है अपने किए की भरपाई करने का।
शायद यहाँ वो युद्ध की हकीकत को बहुत करीब से देखती है। घायल जिस्म, दर्द, मौत, ये काम उसे तोड़ देता है। पर शायद उसे वो समझ देता है जो 13 साल की उम्र में नहीं थी, इंसानी तकलीफ की समझ।
हाँ, ये एक तरह का खुद को सजा देना भी है, सेवा के जरिए।
और फिर एक दिन वो अपनी चचेरी बहन लोला की शादी में जाती है।
लोला, जिस पर हमला हुआ था।
हाँ, और उसकी शादी हो रही है पॉल मार्शल से। वही पॉल मार्शल जो स्लैट टैलीस स्टेट पर था और जो अब एक बड़ा चॉकलेट व्यापारी बन गया है।
ओ।
उन्हें साथ देखकर ब्राइनी के दिमाग में बिजली कौंधती है। उसे एहसास होता है, भयानक एहसास, कि लोला पर हमला करने वाला रॉबी नहीं, मार्शल था।
क्या? तो असली मुजरिम?
असली मुजरिम आराम से जिंदगी जी रहा था, और उसने, ब्राइनी ने एक बेगुनाह को सजा दिलवा दी थी। अब उसे अपने झूठ का पूरा वजन महसूस होता है।
इस एहसास के बाद वो क्या करती है?
वो सिसिलिया से मिलने जाती है, सिसिलिया के फ्लैट पर, और वहां उसे सिसिलिया के साथ रॉबी भी मिलता है, छुट्टी पर आया हुआ।
रॉबी जिंदा?
हाँ, कहानी के इस हिस्से के मुताबिक वो वहां है। मुलाकात बहुत तनाव भरी होती है। सिसिलिया उसे माफ नहीं करती, रॉबी गुस्से में है,
जाहिर है।
ब्राइनी रोती है, सब कबूल करती है, वादा करती है कि वो सच सामने लाएगी, वकीलों के पास जाएगी, रॉबी का नाम साफ करवाएगी।
क्या वे मानते हैं?
वो उसे माफ तो नहीं करते, पर हाँ, एक रास्ता बताते हैं। कानूनी कार्रवाई करो, सच बताओ। ब्राइनी वहां से एक मकसद लेकर निकलती है। उसे लगता है शायद अब प्रायश्चित शुरू हो सकता है।
लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा झटका आता है ना, उपसंहार में।
हाँ, कहानी सीधे 1999 में पहुंच जाती है। ब्राइनी अब 77 साल की है, एक मशहूर लेखिका, पर उसे वैस्कुलर डिमेंशिया है, उसकी याददाश्त जा रही है।
और वो क्या बताती है?
वो पहले तो ये बताती है कि ये उपन्यास अटोनमेंट उसी ने लिखा है, ये उसकी कहानी है।
अच्छा, ये तो दिलचस्प है।
और फिर वो खुलासा करती है जो सब कुछ बदल देता है। वो मानती है कि सिसिलिया और रॉबी से उसकी वो मुलाकात, वो पूरी तरह से काल्पनिक थी, मनगढ़ंत।
क्या मतलब? वो कभी मिली नहीं उसे?
कभी नहीं, वो रॉबी से दोबारा कभी नहीं मिली।
तो फिर सच क्या था? रॉबी का क्या हुआ सिसिलिया का?
सच बहुत कड़वा था। रॉबी हाँ। रॉबी तो 1 जून 1940 को ही डंकर के बीच पर सेप्टिसीमिया से मर गया था, उसी दिन जब वो नाव का इंतजार कर रहा था।
ओह, नहीं।
और सिसिलिया, वो नर्स बन गई थी, परिवार से अलग, लेकिन कुछ महीने बाद अक्टूबर 1940 में बालम अंडरग्राउंड स्टेशन पर बमबारी हुई और वो भी मारी गईं।
तो वो दोनों?
हाँ, वो दोनों युद्ध में ही मारे गए। उन्हें वो जिंदगी, वो साथ कभी नहीं मिला जो ब्राइनी ने अपनी कहानी में उन्हें दिया। असल में रॉबी के जेल जाने के बाद वो शायद कभी ठीक से मिल ही नहीं पाए।
ये तो पाठक के लिए भी एक बड़ा सदमा है। ब्राइनी का प्रायश्चित फिर क्या हुआ?
उसका प्रायश्चित शायद ये उपन्यास लिखना बन गया। उसने अपनी कहानी में उन्हें वो अंत दिया जो असल जिंदगी ने नहीं दिया, एक तरह का काल्पनिक न्याय। पर क्या ये काफी है? यही सवाल उपन्यास छोड़ जाता है।
तो अगर हम मुख्य विषयों की बात करें, सबसे पहले तो यही आता है, कल्पना, उसकी ताकत और उसका खतरा।
बिल्कुल, ब्राइनी की कल्पना ही त्रासदी की वजह बनती है। कहानी कैसे हकीकत को तोड़ मरोड़ सकती है, ये मैकेवन दिखाते हैं।
और फिर वो अपराध बोध और प्रायश्चित की कोशिश, या शायद उसकी नामुमकिनियत।
हाँ, क्या सच में प्रायश्चित हो सकता है ऐसी गलती का? उपन्यास का नाम अटोनमेंट है, पर कहानी शायद यही बताती है कि कुछ नुकसान इतने बड़े होते हैं कि उनकी भरपाई नामुमकिन है।
सच और कल्पना का रिश्ता भी बहुत अहम है। क्या कहानी सच की जगह ले सकती है?
क्या साहित्यिक न्याय असली न्याय है? ये बड़े सवाल हैं।
और सामाजिक वर्ग भेद का मुद्दा भी। रॉबी का शिकार बनना आसान था क्योंकि वो नौकरानी का बेटा था,
जबकि पॉल मार्शल अपने रुतबे की वजह से बच निकला। ये भी एक कड़वी सच्चाई है।
हाँ, और मासूमियत का खोना ब्रायनी की भी और युद्ध के कारण पूरे समाज की भी, और प्यार की नाजुकी, सेसिलिया और रॉबी का अधूरा इश्क।
युद्ध तो खुद एक किरदार की तरह है।
मैकाइवन की शैली की बात करें तो वो किरदारों के दिमाग में उतरने का तरीका, वो फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स कमाल का है।
हाँ, खासकर पहले हिस्से में ब्रायनी के नजरिए से दुनिया को देखना और कहानी की बनावट, तीन हिस्से और फिर वो उपसंहार वाला मोड़।
प्रतीक भी बहुत हैं, टूटा हुआ गुलदस्ता, वो गर्मी, ब्रायनी का नाटक।
बिल्कुल, हर चीज का एक गहरा मतलब है।
कुछ पंक्तियां हैं जो जहन में रह जाती हैं, जैसे ब्रायनी के बारे में वो शुरुआती बात।
हाँ, कि वो उन बच्चों में से थी जिनमें दुनिया को ठीक वैसा ही बनाने की धुन सवार होती है जैसा वे चाहते हैं।
ये उसके किरदार को पकड़ लेता है।
और अंत में बूढ़ी ब्रायनी का वो सोचना कि उपन्यासकार कैसे प्रायश्चित कर सकता है जब वो खुद ही खुदा की तरह अंजाम तय कर रहा है।
कोशिश ही सब कुछ थी, शायद यही उसकी जिंदगी का सार बन गया कि प्रायश्चित भले ही नामुमकिन हो, कोशिश करना ही पड़ता है।
ये कहानी हमें सिखाती है कि एक गलतफहमी, एक झूठ कैसे जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल सकता है, और ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कला सच में अतीत को बदल सकती है या बस हमें उससे जीने का एक तरीका सिखाती है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारंश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।